जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। बहुत भक्ति भाव से पुकारो, ये हमारा आखिरी आखिरी प्रवचन होगा, लास्ट लेक्चर ऑफ योर यात्रा। एंड यू हैव कम टू द बेस्ट प्लेस, बेस्ट लास्ट बेस्ट प्लेस। सो प्लीज, देर आर ट्रीज सराउंडिंग ऑल ऑफ यू, डिजायर ट्रीज, यू कैन फुलफिल योर डिजायर। सब कल्प वृक्ष आपके सामने विराजमान है। सबसे सुंदर सुंदर वृक्ष जो ब्रज के बहुत फेमस वृक्ष हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो ऐसा जगह अभी वृंदावन में भी नहीं रह गया है, सब बिल्डिंग आश्रम सब कमर्शियल हो गया है पूरा। तो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे, और उनका नाम है राजेश लाल जी गोस्वामी महाराज। वो हमारे एक्चुअली गुरु जी के मित्र हैं, तो उनकी ये जगह है, उन्होंने अभी मेंटेन करके रखी है। नो बिल्डिंग नथिंग। ये जो है ना, ये मैंने आपको बताया था ना कि जब वो गाय ने सुना कि कृष्ण भगवान अभी चलेंगे नंगे पैर, यहाँ पर नहीं जूता पहनेंगे, तो ये सब उन्होंने बनाया फाइन पाउडर। इधर आप चलोगे तो आप तकलीफ नहीं होगी आपको किधर भी। ये एक्चुअली ब्रज रज है, दिस इज़ रियल ब्रज रज। हाँ, तो ऐसा वातावरण, पवित्र वातावरण अभी वृंदावन में बहुत कम मिलता है। सब जगह सीमेंट रेती दिखाई पड़ती है। तो इसलिए आप लोग पुकारो, प्रेम से पुकारो। पंछी भी पुकार रहे हैं, राधे राधे, आप भी पुकारो। हृदय से पुकारो, प्रेम से पुकारो, भक्ति भाव से पुकारो। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जितने भी वन हैं उसमें से 12 वन भगवान को बहुत प्रिय हैं, और उन 12 वन में से भी सबसे प्रिय वन है वृंदावन। एक्चुअली पूरे जगह को भी वृंदावन ही कहते हैं, या उसको ब्रज मंडल कह सकते हैं, या तो उसको मथुरा मंडल भी कह सकते हैं और वृंदावन भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मथुरा मंडल ब्रज मंडल के अंदर एक और एक फॉरेस्ट है, स्पेशल फॉरेस्ट जो है वृंदावन। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आजकल ज्योग्राफिकली इसको वृंदावन माना गया है, टेक्निकली आज का जो पिन कोड वगैरह है उसमें इसको वृंदावन कहते हैं जहाँ पर हम लोग आए हैं। लेकिन हिस्टोरिक वृंदावन जो है उसमें नंदगांव बरसाना गोवर्धन जमुना इंक्लूड है पूरा। 20 क्रोशर्स दैट इज 40 माइल्स फ्रॉम हियर, तो ये पूरा वृंदावन माना गया इसको। लेकिन आज के तारीख में इतना सा ही वृंदावन है। रियल वृंदावन में नंदगांव बरसाना जावट गोवर्धन जमुना और ये वृंदावन सब इंक्लूड है। तो ये कृष्ण का राधा रानी का सबसे बड़ा वन, प्रिय वन है। और इसके अंदर कई टाइप्स के वन होते हैं। एक होते हैं अधिवन, एक होते हैं प्रतिवन, एक होते हैं उपवन और एक होते हैं वन। वन, उपवन, प्रतिवन, अधिवन। अधिवन सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे 12 जो मेन वन हैं जो भगवान को बड़े प्रिय हैं, उसमें से 5 आर ऑन दिस साइड ऑफ जमुना एंड 5 आर ऑन दैट साइड ऑफ जमुना। यमुना ऐसे बहती है। हम लोग अभी यमुना जी ऐसे आगे जाके दिखाई पड़ेगा आपको, होप फुली आई विल होप फाई दैट यू कैन सी। और इस तरफ 5, इस तरफ 7, उस तरफ 5। तो ये वृंदावन जो है इसमें भगवान ने रास लीला की है। यहाँ पर दूर जाएंगे ना, ये वृंदावन कैसा है, सपोज अभी आपकी आँख है और आप लड़कियाँ आँखों में काजल लगाते हैं ना, काजल लगाने के बाद में क्या होता है, आंखों के चारों ओर ऐसे काजल लाइन से आता है ना, लाइन वन लाइन कम्स ऑल ओवर द आई। तो अगर आंख वृंदावन है तो वो काजल जमुना जी है, क्योंकि वो ऐसे वृंदावन को पूरा गोल घूम के चली जाती है। दिस इज फ्रॉम डिस्टेंस इट लुक लाइक काजल, लाइन ऑफ काजल ऑन द आई। एग्जैक्टली ऐसे जाती है तो पूरा घूम के ऐसा करके फिर आगे चली जाती है। ऐसा ही सीन है यहाँ पर पूरा। तो भगवान ने जमुना किनारे, अब अगर आप मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, सीधे जाएंगे पीछे आप ऑल द वे टिल द जमुना। उधर एक पेड़ है उसका नाम है बंसीवट। उस पेड़ पे वट वृक्ष है, वट बनियन ट्री है, उस पर बैठ के भगवान ने रात को बंसुरी बजाई थी। इसके लिए फिफ्थ नोट है, फिफ्थ नोट। फिफ्थ नोट किसके लिए है, खाली गोपियों के लिए है। जब वो फिफ्थ नोट बजती है तो गोपियाँ पागल हो जाती हैं, बिलीव एवरीथिंग इन द रन टू कृष्णा। तो बीच ऑफ द इन द मिडल ऑफ द नाइट श्री कृष्णा ने फिफ्थ नोट बजाया था, तो सब लोग घर में सब छोड़ के भागे थे बीच जंगल में, और वहाँ पर भगवान ने रास लीला की थी। और वहीं पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जो मैंने बताया ना कहानी आपको, गोपेश्वर महादेव जो गोपी बने और उन्होंने मानसरोवर में स्नान किया, वो उधर है। तो ये जमुना किनारा और वृंदावन जो है भगवान का रासलीला का बहुत प्रिय स्थल है। सबसे पहले रास भगवान ने यहाँ पर रचाया। तो जमुना किनारे में बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, वन बाय वन आफ्टर अनदर, जैसे ये एक स्थान है उसमें से। इसका नाम है मदन टेर, मदन टेर, ठीक है। मदन का मतलब क्या? क्यूपिड, कामदेव। इन बिब्लिकल टर्म्स इट इज क्यूपिड। हाउ डू यू डिफाइन क्यूपिड? द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव डेमी गॉड, एंड हिज वाइफ इज रति। वो क्या करते हैं? जैसे इंद्र देवता हैं, चंद्र देवता है, सूर्य भी देवता है, ऐसे बहुत सारे देवता हैं, है ना। वैसे कामदेव भी देवता हैं, बट कामदेव की विशेषता ये है कि कामदेव और रति जो है सबसे सुंदर देवता हैं। दे आर वेरी वेरी अमोंग्स डेमिगॉड्स ऑल्सो दे आर वेरी ब्यूटीफुल। देवता बहुत सुंदर ही होते हैं, लेकिन उसमें से भी सुंदर जो हैं वो कामदेव और रति होते हैं। उनका काम क्या है मालूम है? कामदेव के पास एक फ्लावर का बो है, बो। यू हैव सीन दैट इन योर, हाँ, क्यूपिड इज विथ फ्लावर बो एंड फ्लावर एरो, पुष्प धनुष और पुष्प बाण। और वो क्या करते हैं? जहाँ जहाँ माया होती है, जहाँ जहाँ स्त्री पुरुष होते हैं, वहाँ पर वो बाण चलाते हैं। फिर क्या होता है? यू गेट इन्फ्लिक्टेड बाय लस्ट, दैट इज देयर जॉब। सब जगह पर जहाँ जहाँ अट्रैक्शन है मेल फीमेल के बीच में, वेर एवर देर इज एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, हुएवर, ह्यूमन बींग्स, डेमी गॉड्स, वेर एवर देर इज ऑपोजिट सेक्स टूगेदर, देन वॉट हैपन्स? दे गेट एंटैंगल्ड इन द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट सेक्स। ये उनका काम है। तो इन वन सेंस अगर देखा जाए, हम सबके हृदय के अंदर उनका पुष्पबाण घुसा हुआ है ऑलरेडी। वी आर ऑलरेडी अटैक्ड बाय क्यूपिड इनफ। तो वो जो कामदेव है उसका तो बहुत बड़ी कथा है उसकी। हमारे लिए समझना इतना ज़रूरी है कि हम लोग सब कामदेव के बाण से परेशान हैं ऑलरेडी। तो ये जगह है, इसका नाम मदन टेर है। इस जगह पर श्री कृष्ण भगवान अपने गोपियों से एक बार मिल रहे थे, लाइक गुड गैदरिंग, लविंग पास टाइम्स गोइंग ऑन। तो कामदेव अपना बाण और पुष्प लेकर, पुष्प बाण पुष्प धनुष लेकर अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पर आए, और देखा अच्छा सीन है उनके लिए बाण मारने के लिए। एक आदमी है, बहुत सारी लेडीज हैं, लविंग एक्सचेंज गोइंग ऑन। तो उसने क्या किया? अपना एम किया कृष्ण के ऊपर कि इसको बाण चलाते। जब उसने कृष्ण पर एम किया तो कैसे एम करते हैं? भाई ये एरो है, सॉरी ये बो है ऐसा, और ये एरो है ना, तो मेरे हाथ के उधर एरो का पॉइंट रहेगा ना, तो मैं क्या करूँगा? जिसको मारना है उसको ऐसे एम करूँगा, ऐसे जिसके भी मारना है। तो जब मैंने एम किया तो कृष्ण के फेस पर एम किया, तो आई विल सी कृष्ण फेस ना। तो वेन ही सॉ कृष्णस फेस, वो इतना सुंदर चेहरा देखकर कामदेव एकदम ओवरवेलम हो गया। द क्यूपिड बिकम ओवरवेलम्ड सीइंग द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। ऐसा सुंदर चेहरा उसने खुद कभी देखा नहीं था। खाली जब एम किया तो एकदम ध्यान से देखा ना, ही गॉट वेरी अट्रैक्टेड। तो इतना अट्रैक्ट हो गया भगवान को देख के कि उसके हाथ से बाण और धनुष दोनों फिसल गए और वो खुद पिघल गए। ही बेल्टेड हिमसेल्फ। सो दिस इज द प्लेस। स्टोरी बहुत छोटा है बट सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है उसका। द बिगेस्ट डीपेस्ट सिग्निफिकेंस इज देयर। तो इस जगह पर भगवान ने कामदेव को परास्त किया है। कुछ भी नहीं किया भगवान ने, कुछ नहीं किया, वो अपने आप परास्त हो गया। ही गॉट डिफीटेड कम्प्लीटली। ही कुडंट शूट हिज एरो ओनली। His arrow fell down, slipped from his hand, and he melted himself here. Significance क्या है उसका? कि अगर आपको अपने जीवन में कामदेव के बाण से बचना है तो आपको कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा। वही कामदेव को, मतलब आपके ऊपर जो प्रभाव है उसका, उसको नष्ट कर सकते हैं। हम सब लोग कामदेव के प्रभाव से व्यस्त हैं। दुनिया में देखो ना, सब लोग, everybody is mad after opposite sex, है ना। तो ये जो हमारा attraction है वो इस दुनिया में जन्म लेने का मूल कारण है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो attraction है opposite sex के बीच में, यही जड़ है हमारे बार बार जन्म लेने का। The root cause of repeated birth and death is the attraction between opposite sex, विच मेक्स अस कम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, समटाइम्स इन बर्ड्स फॉर्म, समटाइम्स इन एनिमल फॉर्म, समटाइम्स इन ह्यूमन फॉर्म, समटाइम्स इन डेमीगॉड फॉर्म, समटाइम्स इन वेरियस फॉर्म्स, बिकॉज एवरी इन एवरी फॉर्म देर इज मेल एंड फीमेल, एवरी फॉर्म मेल एंड फीमेल आर एंजॉइंग. और ऐसा कहते हैं, माई गुरु जी टेल्स ऑलवेज इन अ जोक, यू नो, वेन अ पिग विल सी फीमेल पिग एंड वेन आई सी माई वाइफ, द फीमेल पिग, सॉरी द मेल पिग विल फील दैट माई फीमेल पिग इज सो ब्यूटिफुल, इवन हीज वाइफ इज नॉट सो ब्यूटिफुल. मैं आपको है, वेन अ रैट विल सी सी रैट, फॉर दैट रैट द सी रैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन ऑन द अर्थ. यू मे फील योर वाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, बट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. जिस जिस योनि में हम जाते हैं, उस योनि में जो मादी होती है वो नर के लिए बहुत सुंदर लगती है. अगर सुअर को आप देखेंगे तो गटर में घूमते हैं, वो पूरा स्टूल यूरिन के बीच में घूमते हैं, पूरा गिला रहते हैं उसके अंदर. फिर भी व्हेन द मेल सुअर विल सी फीमेल सुअर, इट विल अपियर वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू हिम, मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन द वर्ल्ड, गॉड हैज क्रिएटेड ओनली फॉर हिम. ऐसा ही यू मे फील सी हाउ डर्टी इट इज, इफ द पिग कम्स आउट ऑफ गटर एंड स्टार्ट शेकिंग इज बॉडी, यू विल रन अवे ना, यू डोंट वॉन्ट टू हैव द स्प्रिंकल ऑन यू. बट द मेल पिग विल फील मोस्ट फॉर्चुनेट टू हैव द स्प्रिंकल्स ऑन हिम. सो दिस इज माई डियर गर्ल फ्रेंड इज डूइंग इज लविंग जेस्टर्स टुवर्ड्स मी, शावरिंग द ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंट वाटर्स ऑन मी. आप कैसे कर रहे हो अभी? दैट इज वॉट डेमी गर्ड्स डू वेन दे लुक एट अस. आई एम एग्जैक्टली कमिंग टू दैट पॉइंट. वॉट एवर वी फील वेन वी लुक एट पिग्स वेन दे कम टूगेदर, सिमिलरली वेन वी डू समथिंग डेमी गॉड्स लुक एट अस लाइक दिस, बिकॉज देयर बॉडीज डोंट स्मेल बैड, आर बॉडीज स्मेल बैड. समझे? लेकिन जब डेमी गॉड्स को देखते हैं उनके ऊपर के लोग, वो भी ऐसा ही देखते हैं, देखो कैसे फंसे हुए हैं, हाउ एंटैंगल्ड दे आर. तो बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड जो पिग के और शी पिग के अंदर है, जो ह्यूमन बींग के अंदर है, हस्बैंड वाइफ के अंदर है, जो डेमी गॉड्स के अंदर है, बॉन्ड इज सेम. बॉन्ड क्या है? वो बॉन्ड ऑफ लस्ट. लस्ट का मतलब क्या होता है? भगवान को छोड़कर किया हुआ प्रेम. एनी लव माइनस गॉड इज लस्ट. लव ऑल्सो इज लस्ट ओनली, बट दैट इज लस्ट फॉर गॉड. लस्ट फॉर गॉड इज इक्वल टू लव, बाकी सब ओनली लस्ट. एनी अट्रैक्शन विदाउट गॉड, विदाउट कनेक्शन ऑफ गॉड, विदाउट गॉड्स इन्वॉल्वमेंट इज ऑल लस्ट. एंड ऑल लस्ट एंटैंगल यू फर्दर इन रिपीटेड साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ. ये समझना बहुत जरूरी है. तो हमको लगता होगा कि आई एम वेरी ब्यूटिफुल, माई वाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, बट हमारा जो अट्रैक्शन है, अगर भगवान उसके अंदर नहीं है, इज लस्ट ओनली. इसलिए जब आदमी शादी करता है, हमारे मनुष्य लाइक अस वी गेट मैरिड, हमको भगवान के नाम से ही शादी करनी चाहिए. उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम. इट इज़ नॉट मैरिड लाइफ, इट इज़ कॉल्ड एज गृहस्थ आश्रम. वॉट इज आश्रम? आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम मतलब जहाँ पर भगवान सेंटर में होते हैं, इसको आश्रम कहते हैं. आश्रम मतलब टेम्पल एक्चुअली इन वन सेंस, जहाँ पर भगवान के लिए लोग रहते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, भगवान मालिक रहते हैं. मेरे घर पे नाम मेरा रहेगा, लीगली ओके, बट मेरे मन में क्या भाव होना चाहिए कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर भगवान का है, मैं उनका सेवक हूँ, मेरा परिवार भी उनका सेवक है, वो सब उनकी सेवा करते हैं, जाते हैं, कमाते हैं, लाते हैं, उनकी सेवा में रखते हैं, और उनके लिए जीते हैं, उनके लिए ही काम करते हैं. उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम. और बाकी का क्या है? गृहमेदी आश्रम. आश्रम ही नहीं, गृहमेदी खाली. गृहमेदी का मतलब क्या है? केवल शरीर के भोग के लिए दे कम टुगेदर. अभी कैसा है? ओनली आई लाइक यू बिकॉज यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू लाइक मी बिकॉज आई एम अट्रैक्टिव, बस वी कम टुगेदर, देर इज नो अदर रीजन. और गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है? दोनों मिलकर भगवान की सेवा करना है. वी आर कमिंग टुगेदर सो दैट वी टुगेदर कैन सर्व द लॉर्ड. मैं भी भगवान की सेवा कर रही हूँ और आप भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग. अभी साथ में आएंगे और मिलकर भगवान की सेवा करेंगे. इसमें जो बच्चे होंगे उनको भी साथ में लेंगे भगवान की सेवा में, और उनको भी भगवान के लिए इंस्पायर करेंगे. इस तरह से पति पत्नी बच्चे सब भगवान की भक्ति में आएंगे और सब लोग फिर एंड में भगवान के पास जाएंगे, कोई वापस नहीं आएगा। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है कि गृहस्थ आश्रम की स्त्री के गर्भ में जो भी आएगा जीव, वो वापस दोबारा किसी और गर्भ में नहीं जाएगा। द सोल विच एंटर्स इन द वाइफ्स वूम एज अ ह्यूमन बींग, इट विल नॉट एंटर इन एनी अदर वूम अगेन आफ्टर डेथ, इट विल गो बैक टू किंगडम ऑफ गॉड। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम कामदेव के बाण से बच सकते हैं। दिस इज द ओनली वे, कामदेव के बाण से बचना है तो हमको दोनों को मिलके भगवान की सेवा करनी होगी। तो यहाँ पर कैसा हुआ है, अगर हमको कामदेव से बचना है तो कामदेव को जिसने परास्त किया था, वन हु डिफीटेड कामदेव, उसका शरण लेना पड़ेगा। विल हैव टू सरेंडर टू दैट पर्सन हु डिफीटेड क्यूपिड। वेन यू विल टेक शेल्टर ऑफ दैट पर्सन, क्यूपिड कैन नॉट टच यू। सबक समझ में आया? तो ये जगह वो जगह है जहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है आपको? कि मेरा मन भगवान के ब्यूटी के अलावा किसी भी ब्यूटी की ओर अट्रैक्ट ना हो। लेट माई माइंड बी नॉट अट्रैक्टेड टू एनी ब्यूटी अदर देन गॉड्स ब्यूटी, बिकॉज एवरी अदर ब्यूटी इज टेम्पररी, इट लुक्स डैजलिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम इज लॉस्ट। इवन इफ अगर आपको लगता है कि दुनिया में समझो मिस सो एंड सो बहुत ब्यूटीफुल है, समझो मिस यूनिवर्स का प्राइज भी मिला है उसको, इफ शी गेट्स टाइफॉइड देन हाउ शी लुक्स, इफ मिस्टर यूनिवर्स गेट्स ट्यूबरकुलोसिस देन हाउ विल लुक, मिस्टर मोहम्मद अली हाउ डज लुक नाउ। तब ये तो बहुत अट्रैक्टिव था वो, मैनी वीमेन वर आफ्टर हिम, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोग इस दुनिया के ब्यूटी से अट्रैक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस दुनिया की जो ब्यूटी है वो टेम्पररी है, आज है तो कल नहीं है, आज कोई ब्यूटीफुल दिखता है तो कल ब्यूटीफुल नहीं दिखता है। ओनली एट सम टाइम इन बिटवीन 16, 17, 14, 16, 17, 18, उसके बाद में क्या होता है, सब ब्यूटी खत्म हो जाता है। एक बच्चे हो गए, दो बच्चे हो गए, ऑल ब्यूटी फिनिश्ड, फिर देन वी फील अरे क्या देखा हमने इतना, अभी कुछ अभी तो अट्रैक्शन कुछ है ही नहीं। उस समय कितना अट्रैक्शन था, वेयर इज द अट्रैक्शन गॉन? वही लड़की है, मैं वही आदमी हूँ, वी मैरिड टुगेदर, नाउ व्हाट हैपेंड? बिकॉज़ द ब्यूटी इज फेडिंग अवे इन द कोर्स ऑफ टाइम। दैट इज वाई वाइज पीपल, जो बुद्धिमान लोग होते ना, वो कभी भी ऐसे ब्यूटी में मन नहीं लगाते हैं, उनको पता है कि ये ब्यूटी टेम्पररी है। शादी भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, तो भी जानते हैं कि ये प्रेम जो है वो सोल पर करना चाहिए, बॉडी पर नहीं करना चाहिए। समझो मैं किसी, समझो मेरे बीवी के बाल पर मैं बहुत प्रेम करता हूँ, आई लव हर हेयर लाइक एनीथिंग, हर हेयर इज सो ब्यूटीफुल, हर हेयर इज गोल्डन, हेयर सो नाइस सिल्की, यू नो सो ब्यूटीफुल। फिर कुछ देर बाद में वो हेयर ग्रे हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो वेयर इज द हेयर ब्यूटी? सो इफ आई लव ओनली हेयर ऑफ माई वाइफ, आफ्टर सम टाइम आई स्टॉप लविंग हर, बिकॉज हेयर इज गोइंग टू बी नॉट ब्यूटीफुल। बट इफ आई लव माई वाइफ एज अ सोल, देन आई विल कीप लविंग हर ऑल द टाइम। अगर वो बुढ़ी भी हो जाएगी, बाल सफ़ेद भी हो जाएंगे, फिर भी प्रेम रहेगा, क्योंकि प्रेम शरीर पर नहीं था, प्रेम आत्मा पर था, इसलिए वो टिकेगा। तो मैरिड लाइफ का सीक्रेट क्या है? मैरिड लाइफ में अगर आपको पति पत्नी का प्रेम अगर बनाए रखना है, यू वॉन्ट टू मेंटेन दैट लव, यू शुड लर्न टू लव द सोल ऑफ द वाइफ, एंड वाइफ शुड लर्न द लव द सोल ऑफ द हस्बैंड एज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। आई लव यू बिकॉज यू आर अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, एंड वाइफ सेज आई लव यू बिकॉज यू आर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अगर ऐसा प्रेम रहेगा तो लाइफ लॉन्ग वो प्रेम रहेगा, जन्म जन्म तक प्रेम रहेगा वो। हम लोग किस प्रेम को देख रहे हैं? जो हमारे शरीर को संतुष्ट करे, उस प्रेम को हम देख रहे हैं। वी आर ओनली लुकिंग फॉर दैट कि हु विल प्लीज मी। अट्रैक्शन क्या होता है शादी करने में? लव क्यों होता है? जस्ट बिकॉज आई यू आर ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, लेट्स ऑल, अट्रैक्शन इज देयर। कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, बिकॉज इट डजंट लास्ट लॉन्ग। तो यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते हैं और करना चाहिए कि हमें ऐसा अट्रैक्शन दो कि वो केवल आपके लिए हो। और जिसमें जिसमें आप दिखते हो उसके लिए मेरा अट्रैक्शन हो. वेर एवर वी सी द स्पार्क ऑफ यू इन समबडी, लेट मी लव देयर, लेट मी रिपोज माई लव देयर. मुझे प्रेम उस वस्तु से होना चाहिए जिसमें मुझे आप दिखाई पड़ते हो, आपकी छाई, परछाई जो है, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ यू जब मैं देखता हूँ किसी के अंदर, वहाँ पर मेरा अट्रैक्शन होना चाहिए. और कौन सा सोल ब्यूटीफुल होता है? जो सोल भगवान के प्रेम से भरा हो, ही इज मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट ब्यूटीफुल. लेकिन वो उस प्रेम के लिए हमको भी भक्त बनना पड़ेगा, देन वी कैन आइडेंटिफाई, हाँ ये वो सब वैसा ब्यूटी है. इफ़ यू आर नॉट डिवोटी देन ओनली सी फिजिकल ब्यूटी. कोई बोलेगा आप ब्यूटीफुल हो, कोई बोला आप ब्यूटीफुल नहीं बोलेगा, बिकॉज उसका आय जो है वो केवल स्किन और फ्लैश के ऊपर है. तो भगवान के संत भक्त जो होते हैं वो क्या कहते हैं, डोंट लव द फ्लैश, लव द सोल. जब आप फ्लैश पर प्रेम करते हो तो आपको दगा देगा वो एक दिन, निश्चित रूप से. सोल पे लव करते हो तो आपके साथ जाएगा वो, इट विल कम विथ यू. सो इधर और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं. वो जो हमारे पेड़ के पास गए ना हम लोग, वहाँ पर वो पेड़ है ना, वो बहुत पुराना पेड़ है. एक्चुअली जो ओरिजिनल पेड़ है वो चला गया, नया पेड़ आया उधर, वो बरगद का पेड़ है. उसमें भगवान के बंसी के अवतार है ना, उसका नाम है हरि वंश स्वामी. हरि यानी हरि, और वंश मतलब वंशी, मुरली. उनका नाम है श्रीहित हरिवंश गोस्वामी. उनका जन्म ओरछा में हुआ था, मध्य प्रदेश में. वो भगवान के मुरली के अवतार थे और यथावकाश वो वृंदावन में आए. यहाँ पर एक ब्राह्मण था आत्मदेव, उसको कुएं में भगवान की मूर्ति मिली थी, राधा वल्लभ जी. बड़ी लंबी कहानी है, बहुत तभी शॉर्ट करता हूँ उसको मैं. एक दिन भगवान ने स्वप्न दिया उसको, ब्राह्मण को, कि आपके घर के कुएं के अंदर मैं हूँ, मुझे निकालो. तो उठा और कुएं में उतरा. देर आर स्टेप्स, वन टनल इज देयर. उसके एंड में भगवान की मूर्ति उसको मिली, उसका नाम है राधा वल्लभ भगवान, राधा वल्लभ जी. तो उसने उसको निकाला और उसकी पूजा शुरू किया. बहुत देर तक पूजा किया. एक दिन वापस भगवान स्वप्न में आए और बोले कि मेरी बंसी का अवतार हुआ है और वो अभी ओरछा से वृंदावन में आने वाले हैं. उधर उनको भी स्वप्न दिया कि आत्मदेव ब्राह्मण मुझे लेके आपके पास में आएगा. आप जब मिलोगे तो आपको समझेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. यू विल नो हु इज़ ही विल नो हु आर यू. और जब मिलोगे आप तो वो आपको उसकी कन्या इन मैरिज और भगवान को दे देंगे, तो आप स्वीकार करना उसको. तो कुछ समय बाद में हित हरिवंश गोस्वामी जी आते हैं वृंदावन में और ये उनको एक जगह मिलते हैं. और जैसे मिलते ही उनको पता चलता है कि दिस इज़ अ पर्सन हु लॉर्ड हैड टोल्ड. तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं बहुत, और बहुत गदगद होते हैं भावना से, गले मिलते हैं प्रेम से, आलिंगन देते हैं, रोते हैं बहुत प्रेम से. और वो होने के बाद तुरंत वो अपनी बेटी को और भगवान को लेकर आते हैं, उनको दे देते हैं. तो वो इधर रहते हैं इस वन में जहाँ पर हम लोग बैठे. ये पेड़ इतना बड़ा था कि देर वर थ्री होल्स इन दैट पेड़. तीन बड़े बड़े स्पेस थे उसके अंदर. नीचे वाले स्पेस में स्वामी जी रहते थे. सच अ ह्यूज होल इनसाइड द ट्री. अभी तो दिखाई नहीं पड़ता है वो. नीचे वाले में स्वामी जी, बीच वाले में भगवान, और उसके ऊपर वाले में भगवान का सामान पूरा, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग. इस तरह से इस वन में स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी ने राधा वल्लभ की बहुत साल तक सेवा किया. इतना सेवा किया कि इधर बहुत फेमस हो गए वो, राधा वल्लभ जी के गोस्वामी, हित हरिवंश गोस्वामी, उनकी कीर्ति फैल गई सब जगह पर. हिज फेम स्प्रेड एवरीवेयर. इधर डाकू था, उसका नाम था नरवाहन. वो डाकू बहुत खूंखार था, बहुत शक्तिवाली था, शक्तिशाली था और बहुत क्रूर था. ही वॉज वेरी क्रूएल. वो अकेले जाके लोगों को लूट के आता था और उसका भी बहुत यहाँ पर नाम था. बट हम लोग बोलते हैं ना कुप्रसिद्ध, एक है सुप्रसिद्ध, एक है कुप्रसिद्ध. बैडली फेमस एंड गुड फेमस. उसका भी यहाँ पर बहुत दरारा था. तो एक दिन उसको कान में आया कि वृंदावन में कोई स्वामी आया है जो वन में रहता है, पेड़ में रहता है, पेड़ में पूजा करता है, उसका नाम सब जगह फैल गया है, मुझसे भी फेमस हो गया है. तो उसको गुस्सा आता है, वो कहता है मैं उसको मार डालूंगा, मुझसे अधिक फेमस यहाँ पर कोई नहीं हो सकता है। तो ही कम्स, पहले राज वस्त्र पहन के तलवार लेके घोड़े पे बैठ के निकलता है। फिर सोचता है कि अरे एक फकीर को मारने के लिए इतना घोड़ा की जरूरत क्या है, घोड़ा छोड़ देता है, चलने लगता है। तो उसके पाँव के जूता में रेती आती है, नदी किनारे की, जमुना किनारे की रेती आती है, जूता भी छोड़ देता है। फिर चल रहा है गुस्से से, ऐसा किधर है वो स्वामी जी। तो धूप आती है, अभी कैसे धूप आ गई, मैंने कहा स्वेटर निकाल दिया, तो वो भी अपना वस्त्र निकाल लेता है, एक एक करके उतार सब देता है। और जब यहाँ तक आता है तो खाली लॉइन क्लॉथ, एवरीथिंग रिमूव्ड, तलवार इन हैंड, नो शूज, नथिंग, पूरा ओपन। ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू हिम, बट ही इज रिमूविंग एवरीथिंग एंड कमिंग, एंड फाइनली वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आज देखते हैं कौन है, तो महाराज जी बैठकर भगवान की सेवा करते। तो महाराज जी कहते हैं मुझे क्यों देख रहा है, भगवान को देख, व्हाट इज द पॉइंट इन लुकिंग एट मी, सी द लॉर्ड, नरवाहन प्रभु निहार, प्रभु को देखो, मुझे क्यों देख रहे हो। तो वो लाल आंखों से देख रहा है ना, इज एंग्रीली लुकिंग, तो वो ऐसा एक टर्न करके भगवान को देखता है। जैसे ही वो भगवान को देखता है, हिज एंगर मेल्ट्स कंप्लीटली, पूरा ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि एकदम उसको प्रेम की उभरती आती है हृदय में, और वो तुरंत दंडवत प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में वापस स्वामी जी को देखता है कि महाराज जी आई एम वेरी सॉरी, मैं तो आपको मारने को आया था, लेकिन पता नहीं मेरे हृदय में इतना प्रेम क्यों आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई फील सो मच लव। तो कहते हैं प्रभु को देखा ना आपने, प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, आपका परिवर्तन हो गया पूरा, तो उधर ही सरेंडर हो गया वो चोर का राजा नरवाहन, इधर ही रह गया वो स्वामी जी के पास। तो एक दिन क्या हुआ, सरदार तो गए लूटने के लिए, वापस लौट के नहीं आए ना, तो उधर जहाँ पर उसका किंगडम था ना, राज्य था उसका, उसको लगा कोई जानवर ने खा लिया होगा उसको, शेर वेर ने, तो नंबर टू जो था वो राजा बन गया वहाँ पर, और फिर उनका चालू हो गया लूटमार यहाँ पर। तो नरवाहन ना पूरे वृंदावन में रात को घूमता था, एनी बडी इज डिफिकल्टी, कोई तकलीफ में तो नहीं है, रक्षा करने के लिए घूमता था वो। तो उसके चोरों ने एक बार एक आदमी को लूट लिया इधर, और लूट कर कपड़ा उतार कर पेट पे टांग दिया उल्टा उसको, उनका एक स्टाइल था, किसी को लूटेंगे पूरा लूटेंगे उसको, उस कपड़ा उतारेंगे उसको पेट पे टांग देंगे। तो वो पेट पे लटका हुआ आदमी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, तो एक बुढ़िया वहाँ से आई, बोले मैया बचाओ बचाओ। तो मैया ने कहा अरे नरवाहन को पुकारो, नरवाहन रात को घूमता है सबकी रक्षा करने के लिए। तो नरवाहन 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 वहाँ भाग के चले गए, देखा कोई संकट में है, कोई कष्ट में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही वो पहुँचा और देखा जिस स्टाइल से उसको लटकाया था, तो समझ गया कि मेरे आदमी ने उसको लटकाया है। उसको उसने उतारा और प्रेम से उसको सीधे अपने किंगडम में लेके गया, जहाँ पर उसका दरबार रहा करता था, वेर ही केम फ्रॉम, ही डिडंट गो बैक अगेन ना, तो वहाँ पर उसको लेके गया, आदेश दिया क्या क्या लूटा इसका आपने, वापस करो इसको पूरा, गिव एवरीथिंग बैक। और वो वापस सब दिया उसको सामान लुटा हुआ, अच्छा कपड़ा पहनाया और प्रेम से पालके बिठा के घर भेज दिया उसको। तो नरवाहन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, व्हाई, बिकॉज ही मेट द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की भक्त की उसकी मुलाकात हुई ना। जैसे ही हम लोग की भगवान की भक्त की मुलाकात होती है, आवर हार्ट स्टार्ट गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इमीजिएटली, और वो तो प्योर डिवोटी थे एकदम, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनका। तो फिर नरवाहन ने बोला महाराज जी ये पूरा राज्य मेरा है, इट्स ऑल माय लैंड, आई वांट टू डोनेट टू यू माय लैंड। तो मैं अभी एक बाण मारता हूँ और वो बाण जहाँ तक पहुँचेगा ना उसकी सारी भूमि आपको दान दे दूंगा मैं। तो यहाँ पर खड़े रहकर नरवाहन ने बाण मारा है अक्रॉस जमुना, तो वो पूरा वृंदावन को क्रॉस करते हुए अक्रॉस जमुना गया है और वहाँ पर मानसरोवर तक गया है बाण। तो मानसरोवर भी इनकी ज़मीन है, आज भी मानसरोवर भी उनका ही है, राधा वल्लभ जी संप्रदाय का पूरा जमीन जो है अपने गुरु को दान दे दिया उसने और यहीं पर रह गया वो। उसके बाद में फिर हित हरिवंश गोस्वामी ने ये ठाकुर जी को लेकर फिर बीच वृंदावन में गए, यहाँ से वो 2 किलोमीटर दूर है, तो बड़ा भव्य मंदिर है राधा वल्लभ जी का, बहुत सुंदर। हमारे रूप मंदिर की शादी में आप लोग में कौन लोग आए थे, द गोस्वामी जी हैड कम, दैट फेयर शॉर्ट गोस्वामी जी, ही हैड कम टू द मैरिज। तो ये उनकी ज़मीन है, राधा वल्लभ जी का ये ओरिजिनल जगह है। यहाँ पर राधा वल्लभ जी का सबसे पहले सेवा किया गया, फिर मंदिर में स्थापन किया गया। तो ये जगह बहुत सुंदर जगह है, बहुत रमणीक स्थान है। रमणीक मतलब वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीरीन, लविंग प्लेस। और हमारे आई कैम्प की यात्रा में हम हर टाइम यहाँ पर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि यहाँ पर आने से हमारा जो इस वर्ल्ड के लिए अट्रैक्शन है वो कम होना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड प्रे फॉर दैट। नहीं तो जितना समय हमारे मन में इस वर्ल्ड के लिए अट्रैक्शन है उतना समय हम बार बार यहाँ पर आते रहेंगे। जब हमारा मन पूरी तरह से हट जाएगा तभी हम भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। हमारी मेडिकल की एडमिशन होती है, नर्सिंग की एडमिशन होती है, सो मेनी रूल्स ना, इतने सारे एडमिशन मार्क्स, फिर ओरल एग्जामिनेशन, फिर रिटन एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू, फिर मेरिट लिस्ट। पूरा क्लियर होने के बाद में आप एंट्री मिलते हैं ना आपको, उसके बाद में आपको 3 साल 2 साल 4 साल पढ़ाई करना पड़ता है। फिर हम फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर उसके बाद 6 महीने इंटर्नशिप होती है, उसके बाद में यू बिकम नर्स, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज नर्स। इतना सारा प्रोसीजर है, तो भगवान के धाम में एंट्री करने के लिए भी प्रोसेस होगी ना। ये खाली नर्स बनने के लिए तो क्या है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट बिग, नॉट एवरीथिंग इन लाइफ ना, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए ये जो हमारा जीवन है ना, इस लाइफ जो हमको मिला है भगवान की दया से, ह्यूमन लाइफ, ये सभी लाइफ में से प्रेशियस लाइफ है। क्योंकि तो बाकी किसी भी लाइफ में हम लोग को भगवान की पहचान नहीं हो सकती है। थिंक ऑफ रैट, थिंक ऑफ कैट, थिंक ऑफ डॉग, एनिमल, फिश, बर्ड, देर कांट अंडरस्टैंड गॉड। वो खाली क्या समझते हैं, 4 चीज़ समझते हैं, खाना और सोना, फिर ऑपोजिट सेक्स एंड डिफेंस, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इतना ही पता है उनको। और हमको भी पता है, वो वी ऑल्सो नो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, पर हमारा जीवन केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए नहीं दिया है, समथिंग बियॉन्ड फॉर अस। और वो जो है वो हमारा जीवन का पर्पज़ है। हमारे जीवन में भी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग होता है। हम लोग भी रक्षा करते हैं, हम लोग भी बच्चे जन्म देते हैं, हम लोग भी खाते हैं, सोते हैं, सब लोग हम लोग भी करते हैं। वी ऑल्सो हैव टू डू दैट बिकॉज वी ऑल्सो एनिमल्स इन एसेंस। बट ह्यूमन बींग इज अ डिफरेंट एनिमल, मच बेटर देन डेमिगॉड ऑल्सो। डेमिगॉड्स आर टू एंटैंगल्ड इन एंजॉयमेंट, ह्यूमन बींग्स आर फॉर्चुनेट, दे आर इन बिटवीन। और ह्यूमन बींग के जन्म से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। डेमिगॉड के लाइफ से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। डेमिगॉड लाइफ इज वेरी वेरी एंटैंगलिंग इन टू एंजॉयमेंट। अप्सरा, रंभा, मेनका, उर्वशी, ब्यूटिफुल फूड, ब्यूटिफुल बॉडीज, ब्यूटिफुल स्मेल कमिंग फ्रॉम बॉडी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। वो सब ब्यूटी ब्यूटी करके भगवान की याद नहीं आती फिर। इफ यू आर सो मच एंजॉइंग एंजॉइंग एंजॉइंग, यू डोंट रिमेंबर गॉड ना। वॉट यू नीड टू रिमेंबर गॉड, यू नीड सम पेन इन बिटवीन। जब दर्द होता है ना तो उसकी याद आती है। इसलिए हमारे लाइफ में भगवान ने इनफ पेन डाल के रखा हुआ है। डोंट थिंक गॉड इज वेरी क्रूएल ना, बाय द वे, ये हमारा मिस्टेक है। क्योंकि हमको खुशी में भगवान की याद नहीं आती। आती है क्या? सब कुछ अच्छा है, पैसा आ रहा है, एवरीथिंग इज सो नाइस, प्रॉस्पेरिटी कमिंग अप, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी रिच पीपल, यू आर एजुकेटेड, सब कुछ अपने घर पर आ रहा है, यू आर एंजॉइंग एंजॉइंग एंजॉइंग, भगवान की याद नहीं आती हमको। जब पेन आएगा तो बोलेंगे व्हाई गॉड वेयर आर यू, फिर तुरंत भगवान की याद आती है। सो पेन एक्चुअली हमारे ऊपर कर्स नहीं है, पेन हमारे ऊपर ब्लेसिंग है भगवान का। क्योंकि पेन की वजह से हमको भगवान की याद आती है। जब भी पेन होता है तो इसे से थैंक यू माय लॉर्ड कि आपने हमको याद दिलाया आपके बारे में। और ये मनुष्य जीवन श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में पेन है, उतना पेन डेमिगॉड के लाइफ में नहीं है। इसलिए डेमिगॉड्स हमेशा मिस्टेक करते रहते हैं, बार 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 बार। अभी इंदिरा इतना बड़ा डेमिगॉड है ना, वो किंग ऑफ डेमिगॉड्स, भूल गया ना वो, ही कुडंट आइडेंटिफाई द लॉर्ड, ही फॉरगॉट ही इज माई लॉर्ड, और उसके ऊपर ही भेज दिया पूरा डिस्ट्रक्शन का क्लाउड्स, दैट इज डेमिगॉड। सो हमको डेमिगॉड नहीं बनना है, हमको ये जीवन मिला है, ये जीवन आपको और एक बताता हूँ बात, कलयुग में सारे डेमिगॉड्स भक्त के घर में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। क्यों? बिकॉज कलयुग में ज़्यादा मेहनत करने के बिना भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि कलयुग में भगवान ने एक वरदान दिया है। कलयुग में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, बहुत सारे दोष हैं, लोग इतने गिरे हुए हैं, सब लोग झगड़ालू हैं, सब लोग आलसी हैं, कोई काम करने की किसी को इच्छा नहीं होती है, किसी को ज्ञान नहीं है, सबका लाइफ शॉर्ट हो गया है, सब लोग हिपोक्राइट्स हैं। कलयुग के बहुत सारे दोष हैं, ओशन ऑफ फॉल्ट्स, लेकिन अस्ति एको महान गुणा, भगवान का नाम है दिया है इसके अंदर, कि इतने सारे फॉल्ट्स के अंदर भी जब भगवान का नाम कोई लेता है तो वो बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान क्या बोलते हैं, चलो इतने सब लोग पतित हैं, इतने गिरे हुए हैं, फॉलन हैं सब लोग, चलो इनके लिए इजी रास्ता बताते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपना नाम पेश करते हैं, ले लो मेरा नाम ले लो, चैंट माई नेम, कम बैक टू मी, इट्स वेरी इजी ना, नो तपस्या, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। तो क्योंकि इस कलयुग के दोष के सागर में एक आसान रास्ता भगवान ने बना दिया है अपने उनको मिलने के लिए, तो डेमिगॉड जानते हैं इस बात को। डेमिगॉड का लाइफ है ना, वो लैक्स ऑफ ईयर्स का होता है, दे लिव लैक्स ऑफ ईयर्स, उनके लाइफ में ओल्ड एज नहीं होता है, उनके लाइफ में डिसीज भी नहीं होता है, ओनली बर्थ एंड डेथ। तो वो सोचते हैं कि इतना लाखों साल का जीवन जीने के बदले में अगर 70-80 साल में भगवान का नाम लेकर भगवान के धाम में जाने का मौका मिलता है, वाई नॉट। सो दे आर स्टैंडिंग इन लाइन टू टेक बर्थ इन डिवोटीज फैमिली। अगर आप भक्त बनोगे, आपका पति भक्त बनेगा और आप भक्त बनोगे, तो आपके घर में डेमिगॉड जन्म लेगा। वाई? वो ही वॉन्ट्स टू फिनिश हिज बिजनेस इन शॉर्ट टाइम टू गो बैक टू किंगडम ऑफ गॉड इट। इसलिए हेवन और किंगडम ऑफ गॉड इसमें अंतर है। हेवन इज अ टेम्पररी प्लेस, किंगडम ऑफ गॉड इज परमानेंट प्लेस, और हेवन्स में डेमिगॉड्स रहते हैं, वो भी एक दिन मर जाते हैं, दे ऑल्सो हैव बर्थ एंड डेथ, वन डे दे ऑल्सो डाई। तो इसलिए कलयुग बहुत लकी टाइम है, एक्चुअली एक तरह से डिफिकल्ट टाइम है, पर एक तरह से इजी टाइम भी है, क्योंकि इफ यू टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, यू चैंट द होली नेम एंड प्रे, इन दिस लाइफ टाइम यू कैन गो बैक एंड नॉट कम बैक अगेन। इसलिए हम लोग धाम में आते हैं, वी कम टू होली प्लेस फॉर वॉट, बिकॉज वी वॉन्ट टू डेवलप अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड। राइट नाउ वी आर अट्रैक्टेड टू मैनी मैनी थिंग्स, बट वी नाउ वॉन्ट टू डेवलप अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड, भगवान के लिए हमको अट्रैक्शन पैदा करना है। पुराने जमाने में मालूम क्या करते थे, यंग एज में वेन गर्ल इज 8 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड, द फादर विल डिसाइड मैरिज, कि इसके बेटे के साथ शादी करना है। तो क्या करते हैं उसको, फिर लड़की को शादी तय हो गई उसकी छोटी सी उम्र में, लड़का भी छोटा सा है, वो भी छोटी सी है, तो रेगुलरली उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके भेजेंगे उसके पास, आज कुछ लड्डू बनाए हैं, तो शी विल गो एंड डिलीवर, तो कल कुछ दिवाली है तो और कुछ लेके भेजेंगे, फिर उसका बर्थडे है तो और कुछ भेजेंगे। वाई दे डू दैट, वाई दे वर डूइंग दैट, सो दैट द गर्ल विल डेवलप नेचुरल अट्रैक्शन फॉर दिस बॉय, और कोई लड़के मन में आने के पहले ही एक लड़का उसके मन में फिक्स हो जाएगा, नो मेनी बॉयज इन माइंड एंड नो मेकिंग चॉइस कि इसको करो कि उसको करो, उसको करो कि उसको करो। आजकल का लाइफ कैसा है, 50 बॉयज आर ऑलरेडी इंटरेक्टिंग विथ यू बिफोर यू एक्चुअली गेट मैरिड, राइट? 2-3 का लव अफेयर भी ब्रेक होता है, फिर 4th one, फिर 5th one, 6th one, फिर फाइनली 8th one के शादी हो जाती है। दिस इज कलयुग का, पहले कैसा था, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, नो अदर बॉय इन माइंड, नो अदर गर्ल इन माइंड, no contamination, no adultery in mind also. So that is the cultivation of attraction. फिर जब वो she will become puberty age, फिर क्या होगा, as soon as she becomes puberty, she develops attraction for opposite sex. But already one thing is fixed, na? As soon as she becomes puberty, marriage is taken place, finished. So no more diversion of mind. अभी क्या बोलते हैं, क्या पागल लोग हैं, इतना जल्दी शादी कर दिया, अभी तो क्या है, सच यंग गर्ल यू आर मैरिड, बट इसका फंडा क्या है, इसका फंडा है कि जैसे ही बॉय एंड गर्ल बिकम यंग, दे डेवलप अट्रैक्शन फॉर इच अदर, बिफोर दे फॉल इन टू सम एडल्ट्री एक्टिविटी दे शुड गेट मैरिड, सो दैट देयर इज नो एडल्ट्री. आजकल एडल्ट्री एडल्ट्री है, उसके बाद में मैरिज होता है. सो मच कंटेमिनेशन ऑलरेडी देयर एंड देन आफ्टर वर्ड मैरिज टेक्स प्लेस. सो क्या है, ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू एवरी थिंग विच यू आर नॉट सपोज टू गो थ्रू, देर इज नो प्योरिटी इन दैट. इसलिए हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर जो है ना, बहुत हाई लेवल कल्चर है. देर इज नो डेटिंग इन इंडियन कल्चर, डेटिंग इज फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज. देर इज नो डेटिंग ओवर हियर, वेदर यू आर क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, एनी कास्ट यू आर हियर, नो डेटिंग इन इंडिया. एक्चुअली सपोज टू बी नो डेटिंग, वो सब बाहर के लोगों ने लाया हुआ इधर. तो हमको अपने कल्चर के लिए जगना चाहिए. वी हैव टू वेक अप टू आवर कल्चर, आवर कल्चर ऑफ प्यूरिटी, हमारा जो शुद्ध संस्कृति है, उसके लिए हमको अट्रैक्शन पैदा करना है, तभी जाकर हमारा लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.